Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakshmita Vasal Mimatao Krishna Mimveno Aap Sarovandho. Is Taittiriya उपनिषद को लेकर के प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की जा रही। ऋषि जो है पहले अपने उन पूर्व ऋषियों की जो है शुभकामना धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हुए उनको नमस्कार किया। उसके पश्चात अर्वाचीन जिन ऋषियों ने उस भाष्य आदि पर टीका की, वह जो है प्रार्थना करते हुए संकेत करते हैं और अपने प्रतिज्ञा वाक्य को भी संकेत करते हैं। कहा तैतीर्यक सारस्य मया आचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थ रुचि नाम ही व्याख्येयम् संप्रदीयते। यहां चर्चा की कि जो यह तैतीर्य उपनिषद है और इस उपनिषद का जो सार, जिसकी ऋषियों ने भी चर्चा की, जिस सार को हमसे कहा, उस सार को समझना बड़ा कठिन है। अर्थात सार तो आगे चल करके संकेत करेंगे आठवीं आदिवल्ली में कि ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म। तो अब जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, ये कहेंगे आगे, ये सार है उपनिषद का। तो वो ब्रह्म शब्द से हम सब लोग एक तरह से देखा जाए तो परिचित है, लेकिन वो परिचय कैसा है, वो अप्रोच है, प्रत्यक्ष है या परोच, वो चीज अलग है। लेकिन उससे परिचित तो है ही, भले ही परोक्षतया परिचित हो या प्रत्यक्षतया परिचित हो, लेकिन उससे परिचित होने पर भी वह ब्रह्म का जो प्रबोध है, वह जो सार है, वही सारे की सारा सार बतलाते हुए कहा कि इस ब्रह्म से पृथक ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कर्ता भावात, ब्रह्म की सत्ता से कोई पृथक दूसरी सत्ता है नहीं। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर हमारे जीवन में ये नाना प्रकार का उपद्रव क्यों, सुख दुख आना जाना, ये सब का सब जो है सोचना विचारना आदि फिर क्यों, जब एक ही सत्ता है तो वहां तो ये सब नहीं हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं हमसे भूल है, कहीं न कहीं हम उस सार को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे उस सार को कब समझा जा सकता है, तब इसके लिए संकेत किया कि बगैर प्रसाद के इस सार को ग्रहण करना समर्थ मिले। तो प्रसाद की बात कह दी, इसलिए कहा आचार्य प्रसाद तो हो, भगवत्पाद आचार्य के आचार्य के प्रसाद को लेकर के। अब प्रसाद क्या है, तो प्रसाद शब्द का अर्थ जो है प्रसन्नता कर दिया जाता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता माने प्रसन्नता। अब प्रसन्नता भी जहां होगी तो प्रसन्नता का मतलब क्या है, सीधा सा सभी जानते हैं कि जहां पर किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है, उद्वेग से रहितता का नाम ही है प्रसादता प्रसन्नता। तो उद्वेग जो है कहां होता है, तो आप जो है भागवत आदि में देखते हो उद्विग्न बुद्धि रसदात भावात, वहां ऐसी चर्चा की। और यही क्या है, यही सारे संसार का रोग है, सारे संसार में दुख का हेतु, सबसे बड़ा रोग क्या है, तो बुद्धि की उद्विग्नता। और वो बुद्धि की उद्विग्नता क्यों है, बुद्धि में उद्विग्नता क्यों आई, तो उस उद्विग्नता का हेतु बतलाया, कारण बतलाया कि असदात भावात, जो असत पदार्थ हैं उसमें हमारी सत भावना बनी हुई, उसमें सत्यत्व की बुद्धि बनी। तो असत पदार्थ में सत्यत्व की बुद्धि होना यही बुद्धि की उद्विग्नता का कारण। हमारी बुद्धि की उद्विग्नता का कारण क्या है? असत पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि होना, और उसी को लेकर के सारा झंझावात चलता रहता। अब यदि मन प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? तो कहा उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी। तो क्या उसकी कसौटी? तो सत्य पदार्थ हमारे ग्रहण में आ जाएगा, असत्य पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि फिर नहीं होगी, ये होगा। और वह सत्य जो है वही क्या है? कहा वही है सार। तो ऐसे उस सत्य रूप सार को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कहा असत की निवृत्ति हो या बुद्धि प्रसन्न हो, बुद्धि की उद्विग्नता समाप्त हो। और ये कब होगी? तो वहां भी संकेत किया मैंने, जो भगवान है उन भगवान के चरण कमलों का यदि वह बुद्धि सारा ले लेती है तो क्या होता है? तो कहने लगे उसकी उद्विग्नता समाप्त। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य, वहां ऐसा शब्द आया। मने निर्भयता हमें कब प्राप्त होती है? जो अच्युत है, वहां अन्य शब्द नहीं दिया, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी भी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा के चरण कमलों में यदि हमारी बुद्धि लग जाती है तो उसके उन चरण कमलों के प्रसाद से हमारी बुद्धि की जो उद्विग्नता है वो समाप्त हो जाती है। और यहां तक कह दिया जिसकी बुद्धि में ऐसी प्रसादता आ जाती है तो कहने लगे विश्वात्मन निवर्तते भी, संपूर्ण जगत का जितना भी भय है वो उस बुद्धि से निवृत्त हो जा, फिर कोई भय वहां रह जाता नहीं, सर्वथा वो निर्भयता की प्राप्ति कर लेता है। ये सब संकेत किया। तो ये प्रसाद की बात मने आचार के प्रसाद से, आचार की कृपा से। और ये कब होता है, कैसे? तो एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे। एक बार एक संत फक्कड़ थे, फक्कड़, और वो विचरण किया करते, आज यहां कल वहां, प्राचीन परंपरा ही ये थी। तो एक गांव में वह जाते थे, वहां पर उनके जो परिचित लोग थे सभी कुल मिलाकर के अपने जीवन निर्वाह को सुचारू रूप से करते। एक सीधा साधा सरल व्यक्ति था, उसका जीवन निर्वाह जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। उन्होंने, संत ने उससे कहा कि वही अमुक अनुष्ठान कर, अमुक उपासना कर, इस प्रकार से तू व्यवसाय कर तो तेरा जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। उसने उस प्रकार से प्रयास भी किया, उनके बताए हुए कार्यों को किया, लेकिन क्या हुआ? उसकी स्थिति वही की वही बनी। एक वर्ष में वो चक्कर लगाते थे, जब एक वर्ष के बाद आए और उसकी वैसी स्थिति देखी तो फिर उन्होंने और उसको बतलाया कि अभी थोड़ी न्यूनता रह गई होगी, इसलिए तू इस और उपाय बतलाने लगे। उसके अनुसार भी उसने कार्य किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं। तब जो है उन संत ने सोचा कि अब इस पर कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे जो है इसका जीवन सुचारू रूप से चले। तो उनको कहीं पर एक मड़ी मिल गई, उस मड़ी को लाकर के उन्होंने उसको दे दिया और कहा कि इस मड़ी को तुम ले लो, इस मड़ी का प्रभाव है कि जो आप लोहे आदि का भी स्पर्श करा दोगे तो वो सुवर्ण बन जाए। इस मड़ी के प्रयोग के द्वारा तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग उतना ही करना जितनी तुम्हें आवश्यकता, आवश्यकता से हटकर के जो है इसका प्रयोग मत कर। ऐसा कह करके संत चले गए। वह जो है उस मड़ी को ले लिया उसने, फिर जाकर के उसका एक मित्र था, जो मित्र था वो लोहार था, उस लोहार के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई कुछ लोहा जो है मुझे उधार दे दो, क्योंकि उसकी सामान्य स्थिति थी। था तो मित्र, उसने पूछा कि भाई लोहे का तू क्या करेगा, और उसके पूछने का कारण ये था कि ये जो सामान्य जीवन जीना इसके लिए कठिन, तो हमारा ये कर्ज कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसके अंदर न देने की इच्छा थी। उसने कहा कि भाई तू लोहे का क्या करेगा, कम से कम हमें बतला तो। उसने जो है सरल था, उसने सब बतला दिया। उसने कहा इस प्रकार से हमें मणि प्राप्त हुई है और किसी संत ने दी है, और जो है उससे हम सुवर्ण बनाएंगे। अब जब ये बात कही तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा तू हमारा मित्र है, तू लोहे की याचना क्या करता, तुझे लोहा हम वैसे ही दे देंगे, लेकिन हमको इसमें संदेह लग रहा है, हमको इसमें संशय लग रहा है, ये ऐसा संभव हो सकता नहीं, ऐसा कर इसका परीक्षण करके हम देखते हैं। तू उस मणि को मेरे पास लिया और हम उसका प्रयोग करके देखते हैं, यदि मणि सही होगी तो हम तुझे लोहा दे देंगे, चिंता मत कर, लेकिन ऐसा संभव नहीं कोई नकली ही तुझे मणि दे गया हो। वो सरल था, उसने लाके मणि उसको दे दी। जब मणि उसको दे दी, उसने उस मणि को रख लिया, कहा देख अभी दिन का समय है, अभी हमारा व्यापार चल रहा है, हम रात्रि में अच्छी तरह से बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे, तू कल मेरे पास आना। उसने मणि को रख लिया, सर्राफे से जाकर के वैसी ही दूसरी मणि उसने बनवा ली। दूसरे दिन जब वो आया तो उसने मणि लोहे पर पटक पटक करके उससे कहा कि देख ये मणि तो जो है नकली है, मैंने तो कहा था तेरे से। और जब इस प्रकार से उसने कहा तो बेचारा चुप वापस आ गया। एक वर्ष के बाद संत पुनः आए, देखा तो उसकी वही स्थिति। जब देखा कि उसकी वही स्थिति है तो संत ने उससे पूछा कि भाई तूने मणि का प्रयोग नहीं किया। उसने सारी कहानी सुना दी कि इस प्रकार से हमारा मित्र था तो वो मणि जो है नकली निकल गई। महात्मा समझते थे, महात्मा समझ गए कि इस बेचारे के साथ उसने दुराव किया है, इसलिए महात्मा ने कहा चलो ठीक है। दूसरी बार महात्मा जी गए तो उन्हें कहीं हीरा प्राप्त हो गया और हीरा ला करके उसे दे दिया और कहा तू अब इसको बेच करके और संयमित रहना और अपना जीवन निर्वाह करना। ये जब किया तो क्या हुआ, हीरा लेकर के वो जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा जिसके पास सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है और उसके पास ये हीरा, ये तो असंभव सा लग रहा, इसका मतलब है इसने कहीं से ये हीरा चुराया है। उसने जो है शिकायत कर दी और जब शिकायत कर दी तो उसको बेचारे को जेल में डाल दिया गया और हीरा भी उसका ले लिया गया। अब वो जेल में पड़ा। एक वर्ष के बाद वो संत आए, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई वो अमुक व्यक्ति कहां, तो लोगों ने कहा महाराज वो तो जेल में है। अब जब इस प्रकार से कहा तो महात्मा जो है उसके पास जेल में पहुंचे और जब जेल में पहुंचे तो मिलाई करने के लिए जब वहां के कर्मचारियों ने कहा कि महात्मा जी मिलने आए, उसने कहा कह देना बस अब कृपा बहुत है, अब प्रसाद बहुत हो गया, अब आगे नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि उससे कहो कि हम उसे कुछ देंगे नहीं, केवल हम मिलना चाहते हैं उससे। उसने कहा चलो इसने में तो कोई बात नहीं, मिल ले। मिले। महात्मा ने कहा अब हम तुझे कुछ दे नहीं रहे, लेकिन तू यहां जेल में रहेगा, तेरे लिए और कोई साधन है नहीं, इसलिए हम तुझे इसके लिए उपाय देते हैं, इसको मंत्र देते हैं, इस मंत्र को तू गुनगुनाता रहना। उसने कहा चलो इसमें क्या हर्ज, तो महात्मा ने जो है पंचाक्षर मंत्र से दे दिया और वो उस जेल में उस मंत्र को गुनगुनाता रहा। कुछ काल बीतने के बाद जब जो है उसकी पेशी हुई। पेशी होने पर उससे पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की, कैसे की, ये सारे प्रश्न किए गए। जब सारे प्रश्न किए गए तो अब जो है उसने बतलाया कि भाई चोरी तो मैंने की है, लेकिन ये हीरे की चोरी ही नहीं की, हमने इससे पहले भी चोरी की। जैसे चोर फिर सब बतलाने लगते, उसने भी बतलाया, कहा वो किसकी चोरी, कहा कि मड़ी की चोरी की। कहां है वो मड़ी, कहा वो मेरे मित्र के पास है, हमने दोनों ने उसकी चोरी की है, वो मित्र के पास है, तुम जाओ और उस मड़ी को और उस मित्र को ले आओ, फिर हम हीरे की चोरी बतलाएं। कर्मचारी गए उसके यहां छापा मारा तो मड़ी मिल गई, मड़ी को लेकर के और उसको लेकर के आ गए। फिर कहा बतलाओ हीरे की चोरी कैसे। उसने कहा कि भाई हीरे की चोरी के विषय में पूछते हो तो इससे पहले आप ये करो, आप अपने वही खातों को देखो और वही खातों को देखो कि चोरी जब नहीं हुई थी तब आपके खजाने में कितने हीरे थे, उनकी संख्या कितनी थी, चोरी हो जाने पर उसमें कितनी न्यूनता आई, कितनी कमी आई, और चोरी का हीरा वापस आ गया तो उसमें वृद्धि हुई कि पूर्णता हुई, क्या हुआ। ये जो है आप अपना लेखा जोखा पहले देख करके और मुझे बतलाओ, फिर हम सत्य सत्य बतलाएंगे। कहा ठीक। कर्मचारियों को ऑर्डर दिया गया, उन्होंने सारे वही खाते देखे। अब वहां कोई चोरी तो हुई नहीं थी, चोरी हुई होती तो देखा तो जितने हीरे पहले थे, चोरी होने की जो कल्पना की गई थी तब भी उतने ही हीरे, और जब हीरा एक आ गया तो क्या हुआ, तो कहे वृद्धि हुई, वो एक बढ़ती ही हुआ। अब उनको सबको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ, कहा ये क्या राज है। तो उसने कहा इस राज को यदि जानना चाहते हो तो सुनो, राज ये है कि हमारे ऊपर एक संत का प्रसाद हुआ, संत की कृपा हुई, आचार्य की कृपा हुई, और आचार्य की कृपा हुई तो आचार्य ने मुझे मणि प्रदान की। मणि का मैं प्रयोग करना चाहता था, लेकिन ये जो मेरा मित्र है, इस मित्र ने ही क्या किया, कहा हमारे साथ कपट किया, तो वो तो ये मणि है। हीरे की बात है, दोबारा जो उन्होंने प्रसाद स्वरूप हमें हीरा दिया, वो हीरा हम जब जौहरी के पास ले गए तो उसने आपको शिकायत कर दी, आपने मुझे जेल में डाल दिया। और जब ये कहा तो क्या किया, सत्यता को समझ लिया, और जब सत्यता को समझ लिया तो मणि भी उसको दे दी, हीरा भी उसे दे दिया, उस जौहरी और उस लोहार दोनों को का जेल में डाल दिया और उसे पुरस्कृत भी कर दिया। ये तो है दृष्टांत। इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या, तो एक तो तात्पर्य अभी कैसेट में भी आप सुन रहे थे, नाम की क्या महिमा होती, जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर भवत्येव। क्या होता है, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि होती ही। और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जो जप नाम का यज्ञ है वो मैं हूं। ये संकेत किया। अब ये जब संकेत किया तो इसका क्या तात्पर्य निकला, इसका तात्पर्य ये निकला कि यह जो जीव है, और जीव जो है इसकी पूर्ति कभी होती नहीं, इस जीव की पूर्ति कभी क्यों नहीं पूर्ति होती, क्योंकि जिस अक्षुण सुख को ये चाहता है वो अक्षुण सुख से मिल पाता नहीं। क्यों नहीं मिल पाता है, तो संकेत किया, क्योंकि जिससे वह सुख चाहता है वो पदार्थ सुख देने में समर्थ नहीं, माने अन्यथा उसने सुख को समझ रखा है, ये असत्ता है, असत को ग्रहण करना। अब क्या करता है कि जब उस पर कृपा होती है, उसे प्रसाद मिलता है, और प्रसाद मिलता है तो उसे क्या दिया जाता? कहा मड़ी दी जाती। और मड़ी क्या है? तो यही तो सारे शास्त्र युक्ति उसे क्या बतलाते हैं, आत्मा जो है वो क्या है? का सत्य है, ब्रह्म जो है वो सत्य है, और तत्त्वमसि तुम भी वही हो, ये कहा तो जाता। और इसको कभी कभी हम ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो उस बुद्धि के साथ में ही मन भी बैठा, और वहीं पर संशय आदि हो जाता है। मन का स्वभाव है चांचल्य, और वो तो जो है अपने संकल्प विकल्प सृष्टि करने में लगा। तो लोहार भी क्या करता है? लोहार का भी यही काम। तो इसलिए जो है मन लोहार की तरह से उस बुद्धि को क्या कर देता, उस बुद्धि में आया हुआ जो निर्णय युक्त पूर्वक उसने ग्रहण किया है उसको वो स्वयं ग्रहण कर लेता, स्वयं छिपा लेता। और जब छिपा लेता है तो उसके द्वारा बुद्धि फिर वैसी की वैसी, फिर असद की स्थिति रहती, फिर वह दुखों को उठाती रहती। अब जो है फिर कृपा होती है तो उसे हीरा दे दिया जाता। अब हीरा दे दिया जाता है, लेकिन हीरे को लेकर के भी वह क्या करता, जौहरी के पास जाता है तो जौहरी भी उसको है? और फिर वो पुनः जो है बेचारा जेल में ही पड़ जाता है। इसका मतलब क्या? इसलिए एक थोड़ा सा श्लोक भर्तरी ने लिखा, स्थाल्याम वैदूर मैयाम पचत च लसुनम ही ननैश्चंदनोत्थई सौ वर्णई लांगलाग्रैर विलखति वसुधाम अर्कमूलस्य हेतो चित्वा कर्पूर खंडान वृत्तिमीह कुरते को द्रवाणम समन्तात् प्राप्यमाम कर्म भूमिम न चरति मनुजः यस्तपो मंद भाग्या। ये संकेत किया स्थाल्याम वैदूर्यमय्या का कवहू की कर करुणा नर देही। क्या है? कभी उस करुणा के कारण परमात्मा की प्रसन्नता के कारण उसकी कृपा होती है तो क्या देता, स्थाल्याम स्थाली दे दी। और कैसी स्थाली दे दी? कहा वैदूर्यमय्या हीरे जवाहर से निर्मित कहना, जैसे हीरे जवाहर की कीमत है ऐसी कीमती वस्तु से निर्मित उसे जो है ऐसी स्थाली दे दी। स्थाली का मतलब पात्र है। और स्थाली में क्या करते हो? तो संस्कृत में स्थाली कहते, हम लोग उसे बटलोई कहते थे पहले है, बटुआ कहते, भगोना कहते। जो भोजन पकाने का साधन है उसको हम क्या कहते हैं? स्थाली। और जो भोजन पकाते हो तो भोजन ग्रहण करते हो, उस भोजन का ग्रहण करने से क्या होता, पुष्टि मिलती, आप पुष्ट होते। यहां पर संकेत किया स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम, स्थाली दी, उसने कृपा करके क्या दे दी? कहा हीरे जवाहर से निर्मित है ऐसी कीमती थाली हमें प्रदान कर दी। किस लिए प्रदान की? कहने लगे जैसे हम बढ़िया सुपाच्य है पौष्टिक रसपूर्ण सात्विक उसमें भोजन पकाएं और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएं, इसके लिए। लेकिन थाली तो मिल गई और हम उसका प्रयोग भी कर रहे, लेकिन प्रयोग कैसा हो रहा? तो भर्तृहरि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, इस थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचत च लसुनम। थाली तो मिली है बढ़िया खीर पनीर की सब्जी बनाने के लिए, उसमें बनाए, लेकिन हम पका क्या रहे? कहा लहसुन पका रहे। जो सुंदर पात्र मिला उस सुंदर पात्र के अंतर्गत हमें बढ़िया जो है सुंदर वस्तु परफा करते हुए और अपने को पुष्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्या पका रहे हैं उसमें? तो कहने लगे लहसुनम पचत इस लहसुनम। लेकिन पकाने के समय क्या करते हो? पकेगा ऐसे ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती, और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। बगैर ईंधन के, बगैर साधन के कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। अब जो ईंधन है वो क्या है?
कौन सा ईंधन उसमें प्रयोग कर रहे हो?
तो क्या कहा?
कहने लगे हींदनैश्चंदनोत्थई, हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, लहसुन पका रहे हैं, वैदूर की थाली में पका रहे हैं, और उसमें जो है जब पका रहे हैं तो उसमें अग्नि जो प्रज्वलित कर रहे हैं, तो अग्नि प्रज्वलित करने में कौन से साधन का प्रयोग कर रहे, कौन सा ईंधन लगा रहे? कहा चंदनोत्थई, सुंदर जो चंदन की लकड़ी उसको हम उसके पकाने में लगा रहे।
जिसको घिस करके मस्तिष्क में लगा लो तो सारी गर्मी शांत हो जाए,
लेकिन उसे हम किस में कर रहे हैं प्रयोग?
कहा लहसुन पकाने में उसे प्रयोग कर रहे हैं।
उस चंदन का प्रयोग भी हम कहां कर रहे हैं अग्नि प्रज्वलित करके?
कहा लहसुन को पकाने।
और आगे संकेत किया,